तो उद्धव जी, नहीं उद्धव जी नहीं, परीक्षित महाराज और वज्रनाभ भगवान के रानियों को लेकर ब्रज में आते हैं और जमुना जी को देखते हैं। तो जमुना जी उछल रही हैं, लहरों के साथ में उछल रही है, तो सभी उनकी सौतन है ना, सब लोगों एक ही भगवान की पत्नियां हैं। तो बाकी पत्नियों को आश्चर्य होता है कि अरे हम भी इतने दुख में हैं हमारे पति को खोकर, तुम भी हमारी सौत हो, तुमको भी दुख होना चाहिए, लेकिन तुम तो बड़ी खुश नजर आ रही हो, तुम्हें दुख नहीं हो रहा है विरह का। तो उन्होंने कहा कि हम ब्रज में रहते हैं और राधा रानी के संग में रहते हैं और राधा रानी का जो कृपा है और रहस्यमय बात है एक, तो आप इस रहस्य को समझने के लिए कुसुम सरोवर जाओ, गोवर्धन में जाओ, वहां पर उद्धव जी आपको बोध देंगे। तो फिर वो सब यहाँ पर आती हैं, उनको जमुना जी कहती है कि आप जब कुसुम सरोवर जाएंगे तो यहाँ पर आप हरिनाम संकीर्तन करना, भगवान के नामों का गुणगान करना, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो बड़े प्रेम से, बड़े ही प्रेम से भगवान की पत्नियां भगवान के नाम का कीर्तन करती हैं और उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से गुल्मलता के रूप में से उद्धव जी प्रकट हो जाते हैं, तृण के पत्ते के रूप से वो व्यक्ति रूप बन जाते हैं, कम्स मैनिफेस्ट हिमसेल्फ। और वो इसी जगह बैठकर उन्होंने 30 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा किया है। अब श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत तो स्वयं भगवान का रूप है, कृष्ण स्वधाम पगते, जब कृष्ण भगवान स्वधाम को चले गए तब श्रीमद् भागवत का इस विश्व के क्षितिज पर उगम हुआ। भगवान ने अपना संग जो वो व्यक्तिगत रूप में दे रहे थे दुनिया को वो समाप्त हो गया, तो उनका ही संग दोबारा देने के लिए वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हो गए। तो श्रीमद् भागवत जो है वो स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद जो है वो कृष्ण के चरण कमल है, श्रीमद् भागवत के जो दशम स्कंद है वो उनका मुख कमल है, पूरी व्यक्ति है, पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। तो उद्धव जी ने क्यों चुना? क्योंकि वो भगवान के विरह में व्याकुल थी, तो भगवान का संग मिलने से उनकी व्याकुलता दूर होने की संभावना थी, इसलिए उद्धव जी ने, जो भगवान के बड़े प्रेमी ज्ञानी भक्त हैं, उन्होंने अपने श्री मुख से रानियों को बिठाकर 16107 क्यों, जमुना जी अलग है ना, सब यहां बैठकर उन्होंने कथा सुनी, हर एक स्कंद के वर्णन सुनने से उनको भगवान के संग का अनुभव हुआ और तुरंत उनका विरह खत्म हो गया। फर्स्ट स्टेप विरह खत्म हो गया, सेकंड स्टेप भगवान के संग का उत्कट अनुभव किया उन्होंने। दशम स्कंद शुरू हुआ तो खुद की कहानी भी सुनी उन्होंने, दशम स्कंद में ब्रज की लीला के बाद में भगवान ने कैसे कैसे विवाह किया अपने पत्नियों के साथ, उसका पूरा वर्णन दिया गया है, तो अपनी खुद की कहानी भी सुनी तो बहुत उनको उल्लास आनंद प्राप्त हुआ। और जब भागवत की कथा समाप्त हुई तो दशम स्कंद के समय उन्होंने अपने स्वरूप को आकाश में देखा कि वो कौन है, उनका मूल स्वरूप क्या है, वो कौन है, ओरिजिनली हु आर दे, ये अपने मूल स्वरूप को उन्होंने आकाश में देखा। और भागवत की कथा समाप्त होने के बाद में वो उस रूप में विलीन हो गई, मतलब उनका उद्धार हो गया, वो धाम में चली गई, धाम में पधार गई वो। तो इस जगह पर वो दिव्य भागवत हुई है। परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने 7 दिन भगवत सुनाया था, अर्जेंट इमरजेंसी में सुनाया था, इनके पास बहुत समय था, उनको कोई ऐसा शाप वाप नहीं था कि 7 दिन के बाद मरने वाले, तो उन्होंने विस्तार में उनको भागवत सुनाया है बड़े प्रेम के साथ। आप समझ सकते हैं उद्धव जी बोल रहे हैं, सुनने वाले कौन हैं? रानियां भगवान की, उन्होंने भगवान का संग किया है, भगवान की सेवा किया है, स्वकीय रस में वो परिपूर्ण है भगवान के प्रेम से। और उद्धव जी जो इतने उन्नत भक्त हैं, जो अपना उन्नत पद छोड़कर तपस्या करके यहाँ पर तृण का पत्ता बनकर सेवा कर रहे हैं, उनके मुख से भागवत चल रही है, कितनी दिव्य भागवत होगी वो भागवत सुन के सब रानियों का उद्धार हो गया, सुधाम में चली गई, फिर अपने अपने गुलमलता यानी कि तृण के पत्ते के रूप में उद्धव जी फिर विराजमान हो गए। ऐसी ये सुंदर जगह है, ये जो कुसुम सरोवर है इतना सुंदर, उसका अपने आंखों के लिए भी कितना सुंदर दर्शन है इसका। इसके बीच में एक अदृश्य कमल है, उस कमल की सहस्त्र पंखुड़ियां हैं, सुनहरे रंग का कमल है, वो कमल स्वर्ण रंग का हजारों करोड़ों सूर्यों के समान तेजमय जो कमल है वो बीच में विराजमान है। उसकी पहले मध्य में एक हेमपीठ है, बहुत जगह होती है ना वो कमल के बीच में जगह होती है थोड़ी सी पंखुड़ियां खुलने के बाद में, पहले 8 पंखुड़ियां हैं फिर बाकी पंखुड़ियां फैली हुई है, उसे हजारों पंखुड़ियां हैं। बीच के जगह पर हेमपीठ पर राधा और कृष्ण जो हैं वो रत्न सिंहासन पर विराजते हैं, और 8 पंखुड़ियों पर, पहले 8 पंखुड़ियों पर 8 देवियां सखियां भगवान की जो है, अष्ट सखियां ललिता विशाखा इंदुलेखा रंगदेवी सुदेवी चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या, सब लोग अष्ट सखियां सबसे निकट राधा रानी की उनकी सेवा कर रही है। कोई गीत गा रहे हैं, कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई वाद्य बजा रहे हैं, कोई भोजन बना रहे हैं, कोई बीड़ा खिला रहे हैं, और बाकी सारी करोड़ों सखियां जो अपने अपने पंखुड़ी पर खड़ी है और इन 8 सखियों की सेवा कर रही है भगवान की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए। सुंदर वातावरण यहाँ पर। तो यहाँ पर जब भगवान राधा रानी, सॉरी राधा रानी का जब जन्म हुआ तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे और उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया। महाराज ने बताया ना उस दिनों कथा, मैं आपको नहीं चल किसी और को बताई, आपको बताई कि नारद मुनि को भगवान ने रावल में 16 साल का दर्शन दिया, उम्र का बालिका भी थी, रूप में थी, सब अकेले चले गए, तो भगवान नारद राधा रानी ने नारद मुनि को 16 साल के किशोरी अवस्था का दर्शन दिया। फिर नारद मुनि ने कहा कि हमको आपका अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है, तो राधा रानी ने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ। तो यहाँ पर आए, कैसे आए, चल के नहीं आए, ऐसे गोल गोल कोलांटी मारते हुए, बेहोश होते हुए, नाचते हुए, पागल होते हुए, अश्रु बहाते हुए, कंपन होता हुआ, रोमांच होते हुए, सिर्फ भाव विभोर अवस्था में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, उल्टी कूड़ी मार रहे हैं, पता नहीं कब पहुंच गए यहाँ पर, खुद को ही पता चला नहीं। जब यहाँ पर आए तो माधवी गोपी वृंदा रानी इन्होंने मिलकर उनको दक्षिण कोने में स्नान कराया अपने हाथ पकड़कर। तो नारद मुनि नारद या गोपी बने, स्त्री शरीर प्राप्त हुआ उनको, गोपी शरीर प्राप्त किया। फिर वृंदा रानी ने उनको हाथ पकड़कर उनका श्रृंगार किया सखियों के साथ में, बहुत सुंदर गोपी बनाई उनको, उनके हाथ में चामर दिया और वो चामर लेकर उनको हाथ पकड़कर वो दिव्य कमल के बीच में उनको लेके गए। रत्न सिंहासन पर बैठे हुए राधा कृष्ण भगवान को, श्याम सुंदर जी के साथ बैठे हुए राधा रानी को चामर दे के सुपुर्द कर दिया और नारदीय गोपी ने चामर से भगवान की सेवा की, यहाँ से वहाँ प्रेम से चामर सेवा किया। फिर उसके बाद नारदीय गोपी को माधवी गोपी वृंदा रानी ने फिर दक्षिण कोने में लाया, फिर स्नान कराया, दोबारा उनको पुरुष शरीर प्राप्त हुआ। उसके बीच में राधा रानी ने उनको आदेश दिया कि आप यहाँ भी यहीं रहो और मेरे विग्रह की पूजा अर्चा कैसे करनी है उसके बारे में लेखन करो, विधि के बारे में लिखो, हाउ टू वर्शिप। उन्होंने कहा मुझे तो दक्ष राजा ने शाप दिया है कि मैं 3 दिन के ऊपर कहीं रह सकता नहीं हूँ, शाप है मुझे, तो मैं कैसे यार 3 दिन में काम करूँ आपका। तो राजा रानी ने बताया कि दक्ष राजा का जो शाप है वो उस दुनिया में एप्लीकेबल है जिस दुनिया में जन्म मृत्यु होता है, ये तो मेरा घर है, दिव्य धाम है ये, यहाँ पर नारद मुनि आपको दक्ष राजा के शाप का कोई भय नहीं है, ये दक्ष राजा के शाप से मुक्त जगह है, ये दिव्य जगह है, मेरा घर है, आप आराम से रहो, जितना समय रहना उतना समय रहो और ये सेवा करो। नारद मुनि बड़े खुश हो गए और वो यहाँ से ऐसे नाचते हुए वहाँ चले गए। मेरा हाथ है ना इस तरफ, व्हाट डायरेक्शन इज दैट, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, सो देयर इज नॉर्थ, सो उत्तर दिशा में चले गए, एग्जैक्टली उत्तर दिशा में, और वहाँ पर गए, वहाँ पर रहे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से भजन किया भगवान का और ये शास्त्र लिखा, नारद पंचरात्रि का सूत्र, और वहीं पर एक कुंड है उसका नाम है नारद कुंड, वहीं पर नारद मुनि का निवास है, अभी भी वहाँ रहते हैं वो, उन्होंने वहीं पर वो शास्त्र लिखा है नारद पंचरात्रि का विधि सूत्र। तो ऐसी दिव्य जगह है, हाँ हमको नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसके बीच में राधा कृष्ण विराजमान है, यहाँ पर एक ब्रिज है बीच में जो सखियों को अंदर लेके जाता है, और यहाँ पर अखंड लीला चलती रहती है। सुंदर भजन है उसका, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता मणि धाम रतन मंदिर मनोहर आवृत कालिंदी रे राजा हम सकेली कोरे तार भे कनक कमाल। सुंदर जल में राजहंस घूमते रहते हैं, उसके बीच में एक कनक कमल यानी कि सोने का कमल है। तार मध्य हेमा पीठ अष्ट सल वेष्टित अष्ट सखी प्रधान नाईता। उस सोने के कमल में आठ पंखुड़िया हैं, अष्ट दल, उसमें आठ सखियां विराजमान हैं और वो सेवा कर रही है भगवान की। और क्या आगे लिखा है, तार मध्य रत्ना सोने बोशिया छे दुई जाना श्यामा संगे सुंदरी राधिका। उसके बीच में एक रत्न सिंहासन है, उसमें श्याम सुंदर के साथ में सुंदर राधिका विराजमान है। और आगे क्या लिखा है, ओ रूप लावण्य राशि आमी तो पोड़ी छे खाशी हास्य परी हास्य संभाषण। बीच में बैठकर राधा और कृष्ण जो है वो दिव्य आनंद ले रहे हैं, हास परिहास हो रहा है, संभाषण हो रहा है, प्रेम का संवाद हो रहा है। और आगे क्या लिखा है, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय सदाई स्पुर का मोरा माने। नरोत्तम दास जो इस कविता को लिखते हैं वो कहते हैं कि मेरे मन में केवल एक ही इच्छा है, नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय, यह आपकी नित्य लीला है, यहाँ पर नित्य रूप में चिरंतन रूप में शाश्वत रूप में ये सेवा चल रही है और लीला चल रही है, और ये दिव्य लीला जो है जो यहाँ पर नित्य रूप में चल रही है वो सदा मेरे हृदय में स्फुरित होती रहे। लेट दैट डिवाइन पास टाइम बी कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ माई हार्ट, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ माई हार्ट। तो ये सत्य है जीवन का, जीवन में कष्ट होगा, पीड़ा होगी, यातना होगी, लेकिन ये सत्य कभी मिटता नहीं है। हम लोग इतने भी दुखी होंगे फिर भी वृंदावन धाम में कमल दल के बीच में रत्न सिंहासन पे राधा और श्याम सुंदर विराजमान हैं, सब सखियाँ उनकी सेवा कर रही हैं, आनंद की लीला बरस रही है, सुखमय लीला हो रही है, और वो हमारे हृदय में अगर स्फुरित होती रहेगी तो हमें दुनिया का कष्ट स्पर्श नहीं कर पाएगा। ऑल दो वी आर इन द मिडल ऑफ सफरिंग, द सफरिंग्स मे नॉट टच यू, विल नॉट टच यू, इफ दीज पास टाइम्स आर कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट इन योर हार्ट, then you will not be affected by any misery around you। आपके जीवन में कितना भी संकट है, कितना भी कष्ट है, अगर भगवान की लीलाओं का चिंतन आपके हृदय में हो रहा है तो उस चिंतन के प्रभाव से दुनिया का कोई भी कष्ट आपको छू नहीं सकता है। हम लोग क्यों यहाँ पर आते हैं, तोताओं को देखने के लिए, सुंदर सीन को देखने के लिए नहीं आते हैं, यहाँ पर उस भाव को ग्रहण करना चाहते हैं हम लोग, कि जो भाव इतना दिव्य है, यहाँ की लीला इतनी दिव्य है कि उसका स्मरण करने मात्र से ही सब कष्ट मिट जाएगा, प्रेम दीप का उदय होगा और हम भगवान के बन जाएंगे। कुसुम सरोवर धाम की जय। सब लोग प्रार्थना करो, ये दिव्य लीला इतनी महान है, इतनी दिव्य है, इतनी श्रेष्ठ है, उसको समझने में हम योग्य नहीं हैं, उसकी हमारी योग्यता नहीं कि हम समझ पाएंगे उसको, लेकिन लीला तो सत्य है, इसमें मिथ्या तो कुछ है नहीं, जो भी है हमको नज़र आता होगा, नहीं भी नज़र आता होगा, लेकिन कानों के माध्यम से हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने बताया ना पहले आपको, आँखों से देखेंगे तो कमल दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन कानों से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। आँखों से ना देखते हुए भी आपके मन के स्क्रीन पर पूरा सीन चलेगा, पूरा मूवी चलेगा यहाँ की लीला का। इसलिए धाम को कभी भी कानों के माध्यम से देखने का प्रयास करना चाहिए। आंखों से देखने से पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, या गंदा भी दिख सकता है आपको, लेकिन कानों से सुनेंगे तो शुद्ध श्रवण के माध्यम से आपको जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। सब लोग प्रार्थना करो कि हमारे आंखों के सामने जो माया का जाल फैला हुआ है वो आप नष्ट कर दें। हम आपको पुकारेंगे, रो रो कर पुकारेंगे, कष्ट में पुकारेंगे, सुख में भी पुकारेंगे। तकलीफ होगी, स्ट्रेस होगा, टेस्ट होगी, कसौटियाँ होगी, हाँ, लेकिन हर चीज़ हर समय हम आपको पुकारते रहेंगे, हर समय आपको पुकारते रहेंगे, और आप हमें इस माया जाल के प्रभाव से मुक्त करते रहना। और सदा ही स्पुरुक मोरा मने, नित्य लीला सुखम होए, सदा ही स्पुरुक मोरा मने। आपकी जो नित्य लीला है वो हमारे हृदय में हमेशा स्फुरित होती रहे और हम लोग उसी के आनंद में सेवा में लगे रहें। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा।